जब से दुनिया बनी है तब से ही हर एक इंसान के अंदर एक कुदरती तलाश मौजूद है। जुस्तजू कहो, तलाश कहो, खोज कहो, वो किसी चीज को पाना चाहता है जिसको पाकर वो हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाए, हमेशा के लिए सुखी हो जाए, फिर उसको दुख का सामना न करना पड़े। महात्मा दुनिया में आते रहे, वो चीज जिसकी ये इंसान तलाश में था उसको उन्होंने पाया, और जो जो उनके ताल्लुक में आए, जो जो उनसे मिले, उन सब को उसका कांटेक्ट देते रहे, वो भी उसी गति को पा गए जिसको वो खुद पाए। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा कंचन कराए ओ कर ले आप समान। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है। पारस लोहे को सोना बनाता है मगर पारस नहीं बनता। अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष आपको उसी अनुभव को दिला देते जिसको वो खुद पा चुके होते। ये फर्क तो जो जो लोग उनसे मिले वो भी हकीकत को पा गए। उन्होंने क्या बतलाया कि एक ही हकीकत है जो सब में काम कर रही है, एक प्रभु है, परमात्मा है, रूलिंग पावर है कहो, जो सब का पसे पुष्ट आधार है और चला रही है। उसको किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने वागुरु, किसी ने खुदा, अलग-अलग अनेकों नाम उसके थापे गए। उस हकीकत के दुनिया को बोध कराने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, ताकि लोगों को उस तरफ जाने का शौक रहे। तो ये सारे नाम ही काबिले इज्जत है। हमारे दिल में इन सब नामों के लिए इज्जत है। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम, हमारी उस जात से गर्व है जो सब की पसे पुष्ट आ रहा। किसी नाम से याद करो उसको तुम मिल सकते, उसका कोई नाम नहीं माफ करना। बनामे हूं क्यों नामे नदारत, बाहर नामे कहानी सरबरा। उसके नाम से जिसका कोई भी नाम नहीं, नाम तो हम लोगों ने रखे हैं ना, ऋषि मुनि महात्माओं ने, उसका क्या नाम है? ना वो एक है ना दो है माफ करना। कबीर साहब कहते हैं, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसा है तैसा रहे कई कई दिया। एक कहते हम कहें उसको तो वो मिटा गया ना, फाइनेट टर्म्स में उसको बयान किया, जो फाइनेट टर्म्स में आ गया उसका वो तो लाभ बयान रह गया, वो कहाँ आया? एक कहोगे तो दो का सवाल पैदा होगा, अगर दो कहो तो गाली देने के बराबर। कहते वो आखिर है क्या कि कुछ अपने आप में कायम बिलजात हस्ती है, वो वैसी है जैसी है वैसी उसको पूरा अनुभव करे तो करे। गुरु साहबों ने भी कुर्बानी में जहां कहीं बयान किया है, एक ओंकार करके बयान किया, वो एक हस्ती है जो सबकी क्रिएटिव पावर सबको आधार दे रही है। फिर कहा, इस एक का जाने पे हो सोई करता सोई दे, तू बेअंत हो मित कर वनु क्या जाना हो क्या सोरे, तू तो बेअंत है तुझको मैं मित कर, आई नहीं टर्म सब बयान, क्योंकि मैं खुद हद में हूं, तू कैसा है ये बयान में अर्थ नहीं सकती, थोड़ा अनुभव हो सकता। कहते इस एक एक का जाने पे हो सोई करता सोई दे। अगर इस एक एक की पसी पुष्ट आधार जिसको एक करके हम बयान कर रहे हैं अगर उसको हम जान जाएं, वो मालिक में अभेद हो जाता, वो उसमें जाग उठता, उस रंग को ले लेता है। जैसे लोहे का गोला हो अगर आग में डाल दो आग का रूप बन जाता। तो वो हस्ती ना एक है ना दो है, एक करके बयान किया इसलिए कि हम सब फाइनाइट है, हद में मित कर उसको बयान करते हैं। वो कैसा है वो तजुर्बा या अनुभव करने का मजबूत। सदियों फिलासफी की चुनाव चुनी रही मगर खुदा की बात जहां थी वही रही। वो अनसैड लाबयान जात है। महात्मा जिनने भी आज दिन तक आए सब उसी का बयान करते रहे, कर करके ये तो थक गए मगर वो मजमून ताजे का ताजा हमेशा से रहा। ये कभी ना जानिए कि संत महात्मा जात से मुनकर है, नहीं भाई। उस वैदानियत के सचार चश्मे है कहो, इजहार के जगह है कहो, जिससे उनकी जात उनसे झलक देती है, वो उसके पुजारी है सच्चे मानो। जिस पोल के अंतर उसका इजहार हो रहा है उस पोल को देखकर उसका जलवा हमें नजर आता, उसका एहसास होने लगा। एक मुसलमान फकीर ने कहा तो फिर भाई ये मंदिर मस्जिदों की क्या कैफियत है? फरमाते हैं हरगिज मगो कि काबा जो बुतखाना बेतरस्त, ये न कहो कि काबा शरीफ जो है बुतखाने से बेहतर। अरे भाई ये खुदा का हजरत इब्राहिम का बुतखाना था, वो काबा शरीफ बना, और ये हमने मंदिर में मूर्तियां बनाई और था आपने, ये दोनों एक ही समान। हरगिज मगो के खाना से बुतखाना बेतरस्त, मगर कौन सी जगह बेहतर है? हर जा के जलवा जाना नास्त बेहतर, जहां उस मालिक का इजहार हो रहा है वो सबसे बेहतर। वो कहां पर होगी? इंसानी पोलों पर, ऋषि मुनि महात्मा उसकी माउथ पीस बने। जैसे मैं आर्य खसम की मानी तैसा करी ज्ञान लालम, जैसे मालिक की तरह से मुझे आ रहा मैं वही बयान कर रहा हूं। वो मनबुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, वो मजबूर उनके अंतर चला आता है देख प्यार, और वो कहते चले जाते। तो अनुभवी पुरुष जो कुछ कहता है अपने आप कट एंड ड्राई, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान में लो। नानक दास बुलाया बोला। तो ऋषि मुनि महात्मा जिन्हें आज दिन पिताए हैं वो प्रभु जी बसे सादगी था, उनके रत्न पर प्रभु बोलता था, अनुभव से बोलते थे, मन बुद्धि के घाट से नहीं बोलते। तो उन्होंने क्या बयान किया कि एक जात एक वाहिद जात है जो सब की सजदा गा, सब उसी को तलाश कर रहे हैं, मुख्तलिफ नामों के अंतर उसी का दुनिया को बोध कराया गया। वो घट घट में है जरे जरे में समा रहा हो, उसकी सत्य से सारा सिलसिला चल रहा हो। जब वो सत्य इस जिस्म से खींच ली जाती है, जिस्म की परले हो जाती है, उसी सत्य से सारे खंड ब्रह्मण्ड चल रहे हैं। जब वहां से वो सत्य खींच ली जाती है तो परले और महापरले हो जाते। वो जात वाहिद مختلف ناموں سے سنتوں نے اس کا اظہار کیا، مہاتما رشی منیوں نے. تو اس ذات کو سنتوں مہاتماؤں نے نام سے بیان کیا، نام شبد بانی امرت ادگیت پرنو کی دھنی شرتی سنا گیا، رگوید میں سے واکسیدھی کر کے بیان کیا. واکسیدھی کیا کہتی ہے؟ ہمیں سب جیوں کے نرمان کرنے والی. تو میرے عرض کرنے کا مطلب وہ ایک حقیقت ہے، اس کے اظہار کے لیے انیکوں لفظ بدلے گئے. یہ لفظ اس کے بوجھ کرانے کے لیے تھے. مسلمان فقیر نے اسے کلمہ کہا، کلمے سے 14 طبق بنے. تو اکشر تو نہ رہا نا، وہ طاقت ہے جسے 14 طبق بنے. ادھر سے کہا ناد سے 14 بھون بنے، تو ناد اکشر تو نہ رہا نا، وہ طاقت جو 14 بھونوں کے بنانے والی. ادھر کہا نام سے کھل برہمنڈ بنے، تو نام اکشر نہ رہا نا، وہ طاقت ہوئی جسے کھل برہمنڈ بنے. تو نام دو قسم کے ہوئے، ایک باہری ایک انتری، ایک اکشری ایک وہ چیز جس کو اکشر بودھ کراتے ہیں. اس کو مختلف مہاتماؤں نے مختلف لفظوں میں ادا کیا. اس کے ساتھ آتما کا کانٹیکٹ ہونا، جڑنا شانتی اور سکھ کا کام. اس وقت ایک شبد گرو بداسی صاحب کا آپ کے سامنے آ رہا ہے، بڑے غور سے سننے کے قابل. کیا فرماتے ہیں؟ تیریاں کھانی تیریاں بانی ون نامے سب فرق بلانے. یہ مالک جتنی کھانے ہیں، چار کھانے بیان کی گئی ہیں، اکھمج سیتج انڈج اور جیرج. ایک تو وہ ہے جو زمین سے اگ رہے ہیں پیدائش، ایک وہ جو پسینے سے پیدا مچھر عادت کیے وہ، ایک وہ جو انڈے سے پیدا ہوتے، ایک وہ جو جیر میں لپٹی ہوگی جیسے انسان اور حیوانات. یہ مال ہے کہ جتنی کریشن تیری ہے چاروں کھانیوں میں، یہ کس کے آدھار پر چل رہی ہے؟ تیرے آدھار. پھر چاروں بانی، چار قسم کی بانیاں ہیں. ایک بیکری جو زبان دوارا ادا کیا جاتا، دوسری مدما جو زبان کو کنٹھ میں لگا کر کنٹھ میں بولا جاتا اس کو مدما بولتے ہیں، ایک پسنتی جو ہردے میں جاپ ہوتا، ایک پرا جو پرانوں دوارا یوگی جن پرانوں کے ہلور کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ چار قسم کی بانیاں، یہ بانیاں بھی کس آدھار پر چل رہی ہیں؟ مالک کہتے تیرے آدھار پر. چاروں کھانی اور چاروں بانی سب اکشروں کا بیان بھی آ گیا، ہے زبان سے ہے یا کنٹھ سے ہے یا ہردے سے ہے یا پرانوں سے ہے، یہ بھی اور ساری پیدائش بھی آ گئی. ون نامے سب بھر بھر. اے پربھو، بغیر نام کے آدھار کے یہ سب ایک بھرم ہے، باہری سلسلہ جس کی ٹھیک سمجھ نہیں آتی جب تک نام کی کیفیت اس سے کانٹیکٹ نہ ہو. یہ کہو کانشیس کو ورکر وتھ گاڈ نہیں بنتا ہے، پرماتما کے ساتھ وہ جو حکم اس کا چل رہا ہے جس کے آدھار پر یہ سب کو بن رہا ہے لے ہو رہا ہے، جب اس کا کانٹیکٹ نہ ملے اس کو سمجھ نہیں آتی. یہ سب بلانے والی چیزیں. آپ دیکھیے چاروں بانی کا ذکر کر دیا، زبان دوارا کنٹھ دوارا ہردے دوارا اور پرانوں کی حضور دوارا. اس کو سنتوں نے پون کی بانی کر کے بیان کیا. پون کی بانی آخر سننا، پون کی بانی یہ پون کے آدھار پر چلو، زبان سے کرو کنٹھ سے کرو ہردے سے کرو ہے پرانوں کی ہلور کے ساتھ کرو. اے من رتا مایا، ये मन माया में रहता रहता। यक्षिणी हुए ना, जवान श्री हुई या कर्ण श्री हुई या हृदय श्री हुए, कहते सब माया माया के मैंने भूल। देने वाली चीज उसको नहीं जान रहे। तो दो किस्म की वाणी हुई, एक बाहरी वाणी जिसको पवन वाणी कहते हैं, पवन के आकार वाणी कहते हैं, एक वो वाणी जिसको वाक सिद्धि करके बयान किया, श्रुति अनहद वाणी करके बयान किया। अनहद वाणी पूंजी संतन हथ रखी हुई, जिसको श्रुति करके बयान किया, कलमा करके बयान किया, नाम करके बयान किया। तो दो किस्म की वाणी हुई, एक बाहरी एक अंतरी। अंतरी वाणी को कहा गुप्ती वाणी प्रगट हो गई, वो गुप्त है, सबका आधार, वो गॉड इन एक्शन पावर कह दो, परमात्मा परिपूर्ण का नाम वाणी रख दिया, या गुप्ती वाणी रख, अनहद वाणी रख। तो अनहद वाणी के मतलब क्या जिक्र करते हैं, त्रैगुण वाणी ब्रह्म जंजाला, जो तीन गुणों के अंतर्वाणी है, जंजाल है बाहर फैलाव में है, इसके आधार पशु पोष आधार जो वाणी ताकत चल रही है वो असल चीज है, उसके साथ लगना है, इनके जरिए से चलना, ये पहला कदम। तो संतों ने क्या कहा कि जितनी पैदाइश है चारों खानी, चारों ही वाणी जो है वे ना वे बगैर ना, वो पावर जो इनको आधार दे रही है उसके न जानने के स्वभाव से सब दुनिया भूल में जा रही है। याद है किया लिखना पढ़ना विचारना ये वो कहां रह गया। तो जब तक वो पावर, अब नाम किसको कहा, बिन नावे सब भ्रम पुलाने, उस नाम के बाद सारी दुनिया ही भ्रम में जा रही। अब बानी करके भी इसको बयान किया, मर अनहद बानी सत बानी ये लफ्ज बढ़ते, गुप्ती वाणी कहां से मिलती है कि संतों के पास इसकी कुंजी है। वो वाणी कब से सवाल ये, उसको सच्ची वाणी करके भी बयान किया, ये इसका मतलब ये है, ऐसी वाणी जो कभी फना होने वाली नहीं हुई। पर इसका ये मतलब हुआ है जो कुरान ने कि ऐसी वाणी भी है जो फना होने वाली है, जितनी अच्छी वाणी है ये सब पवन के आधार पर चल रही है। तो ये वाणी और वो वाणी में बड़ा भारी फर्क हो गया कि नहीं, कहती ये वाणी कब से है। दो किस्म की वाणी हुई, एक तो वो वाणी है जो संतों ने उच्चारण की, ऋषि मुनियों ने उच्चारण की, जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, एक तो वो वाणी, उस वाणी की कीमत भी उम्मीद लाल है बच्चन हीरे और जवाहरात से ज्यादा कीमती, किन लोगों के लिए जिनको इस तरफ की खोज है, बाकियों के लिए नहीं। तो वो वाणी हुई एक, उस वाणी के मुतालिक बड़ी भारी कीमत है भाई, जो जिस राह में जाना चाहता है, जो महापुरुष सृष्टि गए उसका अपना जाती तजुर्बा बयान करते रहे, कैसे पाया उन्होंने उस चीज को जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता, कौन कौन सी चीजें उसमें मददगार साबित हुई, कौन कौन सी चीजें उस रस्ते में हायल हुई, समझे, उसका जिक्र और क्या क्या उनको तजुर्बा हुआ। उनके पढ़ने से इंसान के अंदर शौक पैदा होता, तो उसकी कीमत भी अपनी है, समझे, उसको भी हम अंडर रेट नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने उस हकीकत को पाया, उनकी वाणी, इसीलिए गुरुवाणी में कहा सतगुरु बाजो हो कच्ची है वाणी, अनुभवी पुरुष के बगैर जिनने कलाम है ना लोगों के, ये सब कच्चे हैं, कारण उन्होंने अनुभव को पाकर बयान किया, ایک دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. سن سنتن کی ساتھی ساتھی سو بولے جو پیچھے آتی. ایک دیکھ کر بیان کر رہا ہے, اپنا فرسٹ ہینڈ تجربہ بیان کر رہا ہے, دوسرا صرف خیالی پلاؤ بیٹھ کے گرنتھوں کے گرنتھ لکھ دیتا ہے. پھر دونوں میں کتنا بھاری فرق ہوگا. پنڈت جی کبیر صاحب کے پاس ایک بار آئے تو ان سے کہہ لیں کہ دیکھ بھائی پنڈت, میرا تیرا منوا کیسے ایک ہو ہی رہے. اے پنڈت, تیرا اور من میرا کیسے متفق ہو سکتا. میں کہتا ہوں آنکھن دیکھی, تو کہتا ہے کاغذ کی لیکھی. کہ میں تو آنکھوں سے جو دیکھتا ہوں وہ بیان کرتا, تو گرنتھوں پوتھیوں کو کوٹ کرتا. فلانا رشی یہ کہتا, فلانا بید یہ کہتا, فلانا شاستر یہ کہتا. ارے بھائی, تو پڑا ہوا اگال رہا ہے جھوٹھی پتل چاٹ, اور میں دیکھ کر فرسٹ ہینڈ تازے سے تازہ بیان کر رہا ہوں. فرق ہوگا کہ نہیں؟ دیکھی سنی بات کچھ اور, سنی بات کچھ اور اور دیکھی بات کچھ اور. جو دیکھا, جس نے دیکھا, اس کے اندر اس کا تھوڑا نشہ بھی ہے, اس کی اظہار میں بھی اس کا تھوڑا چارجنگ جائے گا جس نے دیکھا ہی نہیں. مثال دنیاوی ہے مگر سمجھنے کے لیے. ایک لڑکی کی شادی ہو گئی, وہ بیٹھ کے گھر میں آئی ہے, سب لڑکیاں مل بیٹھتی ہیں, وہ بھی جن کی شادی ہے اور جن کی شادی نہیں ہوئی, وہ سب پتی کے گیت گاتی ہے, سر مار مار کر گاتی ہے. مگر اب یہ دیکھیے, جس کی شادی ہوئی وہ جو لفظوں میں جو بیان کر کے جو اس کو رنگ روپ یا احساس ہوتا ہے وہ دوسروں کو سنے. ایسی دیکھی بات بیان کرنا کچھ اور رنگ اور نشہ رکھتی ہے. اس کے بیان سے بھی اس کو دوسروں کو کچھ حصہ ملتا جسے دیکھا ہی نہیں. پھر کہا میں کہتا ہوں سلجھاون کارن, میں جو بات بیان کر رہا ہوں اس ممبر کو حل کرتا چلا جاتا ہوں, لوگوں کی گنجلیں کھلتی چلی جاتی ہیں, مشکل سمجھ آنے میں لگ جاتی ہے. اور تو کہتا اور ظاہر ہے جو کچھ تو بیان کر لوگوں کو اور الجھنوں میں ڈالتا. دعا اٹھ رہا ہے بھائی, یہ آگ ہوگی یا بادل ہوں گے. ارے بھائی, ایک چیز تو ہوگی, یہ تو پتہ نہیں کیا ہے. جنہیں دیکھا کہتا آگ جل رہی ہے, بھائی اس کا دھواں. تو کٹھنی اور کرنی میں بڑا بھاری فرق ہے. تو سنتوں کی جو بانی ہے نا, رشیوں منیوں مہاتماؤں کی, وہ انبھوی بانی ہے, وہ پکی بانی ہے, باقی سب کچی بانی. لٹریچر جن بھی تم کو ملے گی, جو انبھوی پرش نہیں, ان کے بیانات تم کو بکش نالج از ولڈرنس. آپ کو ایک جنگل میں پھنسا دے جہاں سے نکلنے کو نو وے آؤٹ, کوئی رستہ نکلنے کو نہیں ملے گا. ارے بھائی, کہنے والے کا جو انتر ہے, کیا کہنا چاہیے, گنجل نہیں کھلی, دوسرے کو کیسے کھلی. جن کا اپنا من کھڑا نہیں, اس حقیقت کو دیکھ نہیں رہا, اگر وہ اس کے متعلق کچھ بیان بھی کرتا ہے تو کیا کرے گا, الٹا لمبے دور رستے پڑ جائے گا نا. ایک ہاتھی کے متعلق بیان کرتے ہیں, کئی اندھے تھے اس کے پاس گئے, کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا, اس نے کہا بھی وہ تھمب کی طرح. کسی نے اس کے سونڈ کو ٹٹولا, کہتے لمبا رسا. کسی نے اس کے پیٹ کو ٹٹولا, کہ وہ ایک بیرل ہے بھائی. ہے سب ٹھیک اپو اپنی جگہ, پر ایک ہاتھی کو دیکھ رہا ہوں, کہتے ہیں یہ سب کچھ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی. اب اس کا بیان اس کے بیان میں کتنا بھاری فرق. تو سنتوں کی بانی جو ہے نا, وہ خاص اہمیت رکھتی ہے. رشی منیوں مہاتماؤں کے جو کلام ہیں وہ بڑے پرمغز ہیں, اصلیت کے راز دے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر بیان کرتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بات ہے, کیا بانی اچرے ساد جن ہمیں وہ چلے چرنا. چرنے کہتے جیسے فوارا چلتا ہے نا, ठंडक देता चला जाता। ऐसे जब अनुभवी पुरुष बोलता है तो वो कुछ कहता बयान करता चले, उसे लोगों को चार्जिंग होती चली जाती, एटमॉस्फेयर में चार्जिंग। क्यों? जैसे भी हमें खसम की बाणी तैसा करीजिए मिला, वो तो देखी बात बयान करते, उस नशे को पाया है, देखा है और अब भी पा रहे हैं, उससे बयान करते दूसरों को नशा मिलता जाता। तो बाहरी बानियों में से जो अनुभवी पुरुषों की बानिए हैं वो ऋषियों की हैं, संतों महात्माओं की हैं, किसी अनुभवी पुरुष की है, ईस्ट की है या वेस्ट की है, अनुभवी पुरुष की है, फर्स्ट इन नॉलेज जिनको गेन हुआ वो असल में सच्ची बानी है और बाकी जो चीजें बाहरी लिहाज है। मगर पवन की बानी के लिहाज से ये आखिर ये भी पवन की बानी जो इसके आधार पर से पुष्ट बानी काम कर रही है, उस वो सच्ची बानी है, वो हमेशा रहने वाली। जैसे तो वो कब से है बानी वजी चौ जुगी सचो सचना, बानी चारों युगों में बज रहे, वो सच की खबर दे रहे हैं चारों युगों में। अब बाहरी महात्माओं की बानी लाओ कब से है, स्वामी जी की बानी 100 साल से पहले नहीं, अनुभवी पूछते हैं। तुलसी साहब की बानी यही है 100-150 साल। ऐसे ही गुरु साहबों की वाणी 500 साल से पहले नहीं थी, गुरु साहब कहां था। ऐसे ही 12-13 साल 1400 साल पहले कुरान शरीफ की वाणी नहीं थी। वो कहते हैं आयती हो सकती थी तो इसके बाद आप 2000 साल पहले चले जाओ तो बाइबल भी ना होती हमारे पास, उसकी बानी यीशु मसीह साहब की बानी ना होती। 5000-6000 साल पहले बौद्ध मत और जैन मत के ग्रंथ भी ना होते, उनकी बानी उन महापुरुषों की बानी भी ना होती। ऐसे ही जरदोष के टाइम से पहले भी जरदोष महात्मा की बानी ना होती। अगर कहीं हम वेद शास्त्रों के टाइम से पहले आ जाते ऋषि मुनि तो वेद शास्त्र भी ना होते। मैं गुरु नानक साहब वाणी बजी चौ युगी चारों युगों से बजती चली है, इसमें शुक्ति है, इसमें उद्गीत हो रहा, साउंडिंग प्रिंसिपल तो चारों युगों से चली आ रही, ये वो वाणी। क्या उसका क्वांटिटी कहाँ होता है कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहब सुनने लाए, अंतर ज्योति है उसमें से श्रुति हो रही उद्गीत हो रहा। क्या अगर उसको तुम सुनने लग जाओ प्रणव की धुनि को, उस सच्चे मार्ग से तुम्हारी दिल लग जाएगी। मनुष्य के साथ कॉन्टेक्ट कब होता है, गुप्ती बानी प्रगट हो, अनन बानी संतन अथराखी गुजी, वो क्या करेंगे, कहां पर सुनाई देती है, क्या नीचे चक्रों में है, कहते नहीं आगे चक्र की ऊपर। तो दो किस्म की बानी होगी, एक चारों बानी, एक उसकी पशु पुष्ट आधार बानी। उसी तरह दो किस्म के नाम हो गए, एक बाह्य नाम अक्षरी नाम, एक वो नाम जो गुप्ता नाम गुप्त नाम पर गाजा, वो नाम जो सब खंडो ब्रह्मणों को ले चला, नानक नामे के सब कुछ वस है बिन पूरे भाग को वाई, कि नानक ऐ नानक उस नाम के कंट्रोल में सारी दुनिया चल, सारी क्रिएशन चल रही है। वो अक्षर ना रहा बड़े ऊंचे भागों से तलक मिले। तो ऐसे शब्द भी दो किस्म का रहा, एक बाहरी शब्द एक अंतरी शब्द। बाहरी शब्द लिखना पढ़ना विचारना बोलना ये वो ग्रंथ पोथे सब उसमें आ गए, ऐसे बानी में आ गए, ऐसे बाहरी अक्षर नामों में आ गए। और अंतरी शब्द جس کے آدھار پر یہ سب کچھ چل رہا اس کو پرنا شبد ہوا, شبد ہی پھر وہ کچھ ہوا, اس پتی اور پرنے جس کے آدھار پر ہو رہی ہے کہتے ہیں وہ, اور پھر دوبارہ سیٹی کا آغاز جس آدھار پر اس کا نام شبد ہے, وہ شبد شد پن رہا. تو فرما رہے ہیں کہ جتنی کریشن ہے چارے کھانی جو ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوتا, دنیا بھول بڑھے, وہ حقیقت سے دور رہتی ہے. یہ ذریعہ ہے اس کو ہم نے ٹرانسینڈ کرنا, اوپر چڑھنا. اب کوئی انبڑی خوش جو اس راز کا واقف ہے وہ آپ کو اس کے پلے کا تجربہ کرے تب تو ہوش آ جائے, نہیں تو ساری دنیا ہی چاروں بانیوں میں لگی پڑی. یہ کب کے کلام ہے, جب گرو امر داس جی صاحب کو گرو انگد صاحب کے چرنوں میں بیٹھنا نصیب ہوا تب یہ بیان کر رہے, تمیزی بیان ہے جو اپریشیٹ کر رہے ہیں, حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں. بڑے غور سے سننے کے قابل. جی
گر سیوا سے ہر نام پایا دن ست گر کو نام پاونیا.
کہتے وہ نام کیسے مل سکتا ہے, اکشری نام نہیں وہ پاور نام, نامے ہی تھے سب جگ ہوا بن سدگن نام نہ جا پا, نہ وہ طاقت جس سے سارا جگت انٹو بینگ یا ہستی میں آیا, اس کا نام نام اکشری نام نہیں. باہری ناموں سے بھی بلے ہار جاؤ جیتے تیرے نام ہے, مگر جن کو یہ نام بودھ کرا رہے جس پاور کو, وہ اصل پاور نام ہے. سچا نام کہہ دو, ایک باہری نام فنا ہو جانے والا نام کہہ دو, اکشری نام جو ہے. باون اکشر لوگ ترائے سب کی چینی ماں ہے, اے اکشر کھل جائیں گے او اکشر ان میں نہ, جن جو اکشروں میں انہیں کے سب کچھ بیان ہوتا کہ یہ اکشر تو کھل جانے والے ہیں. وہ اکشر نے اکشر برہم, اکشر بم جو ہے اکشر نے اکشر پارا, وہ لکھنے پڑھنے میں فنا ہونے والا چیز نہیں, اس کو جاننا. تو کہتے ہیں وہ اس کا نام کا کانٹیکٹ کہاں ہے, نو نے بھی امرت رم کا نام دے ہی میں اس کا وشن, آپ کے اندر اس کا ڈیوائن لنک موجود ہے. کہاں پر ملتا ہے, ادرشٹ اگوچر نام پارا, انوں کے گھاٹ سے اوپر آ کر ملتا, نیچے چکروں سے اوپر چل کر ملتا. اس کایا نگری اندر منگل چلے یوگی تا نام پلے, اگر چھ چکروں سے اوپر آؤ تب اس نام کو کانٹیکٹ ملے گا. لوئسٹ لنک جو سب کا کریٹ ہے, سب کو پس پوچھتا آدھار ہے. تو کہتے ہیں یہ نام کس سے ملتا ہے, فرماتے ہیں گر سیوا تے ہر نام پایا, کسی ان بھائی پش کی چرنوں میں بیٹھ کر اس نام کا کانٹیکٹ ملتا, پایا پراپتی ہوتی ہے. اور کن ناموں کا تو سارا جہاں ہی ذکر کر رہا ہوں. تو پھر کیا تاکید کرتے ہیں, بن سدگر کوئی نہ پاونے, بڑی تاکیدی لفظ بیان کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں گرو سے یہ دولت ملتی ہے, انمہی پوچھ سے جو آتم تتو درشی ہے اسی سے آتم تتو کا بودھ ہوگا نا. بھگوان کسی نے گیتا میں کیا فرمایا, اگر تم گیان پانے کے خواہش مند ہو کسی ایسے مہاتما کے پاس جاؤ جو آتم تتو درشی ہے, جو اس نے خود آتم تتو کا بودھ نہیں کیا, اپنے آپ کو نہیں جانا, اس اوور سیلف سے اس کا کانٹیکٹ نہیں ہوا. ارے بھائی وہ آپ کو کیا دے گا, پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ گرو سے یہ نام ملتا ان بھائی پوچھا آتم تتو ترشی سے, फिर क्या, फिर ताकीद करते फिर सतगुर कोय न पावण, फंडामेंटल असूल कह दिया। जब तक सत स्वरूप हस्ती न मिले, सदगुरु सत स्वरूप है, तब तक उस सत को कॉन्टेक्ट नहीं मिलता। सत का कॉन्टेक्ट कहां, इंद्रियों की घाट पर है नहीं। जिनकी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों की घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है और जगत का रूप बनी बैठी है, और जो साधन कर रहे हैं वो सब इंद्रियों के घाट के साधन कर रहे हैं, कि ये बताओ वो इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे जा सकते हैं। अगर कोई भाई जा सकता खुशी की बात है, लेकिन ट्राई एंड सी, कोशिश करे और देखे, मरीजों के घाट से कैसे जाएगा। किसी उभार की किसी की जरूरत है। ग्रंथों पोथियों से कई भाई कहते हैं सिर्फ पढ़ पढ़ा कर हम समझ लेंगे, बहुत अच्छी बात में करके देखो। कई शायद ऐसे मिले हैं जिन्होंने ऐसा शुरू किया, कोई अंतर प्रैक्टिकल मुश्किल बन गई अमली तौर पर, तो फिर किसी अमल के बाद भागते हैं। किताबें तो बोलती नहीं, ये नहीं कि ग्रंथों पोथे हो उसका जिक्र नहीं, जिक्र तो है मगर पता नहीं कहां लिखा। जिसे प्रैक्टिकल करके देखा फिर भी किसी टकरे मारकर गुरु फिर के रहा है, गुरु मुख पाऊंगे, फिर किसी अमल के चरणों में जाकर वो गुंजल हल होनी है, तो क्या चौ के पहले दिन ही ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ जाए जिसने उसके अनमन को पाया है, ताकि गलती में न जाए। आज जो गुरुडम बदनाम है वो सिर्फ दिल्ली गुरुओं की बदनामी है, माफ करना। बट्टा उठाओ तो अनेकों गुरु मिलते हैं, शिष्य को नहीं मिलता। मन सच्चे अनमही महात्मा के बगैर जीव की कल्याण नहीं है। उसका कारण ये एक प्रैक्टिकल मजमून है, सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। इंजीनियर की किताबें पढ़ लो, आप इंजीनियर तो नहीं बन सकते, वो प्रैक्टिकल चीज। किताबों की भी जरूरत है मगर प्रैक्टिकल कराने वाले की भी जरूरत है। डॉक्टरी डॉक्टर इंसान नहीं बन सकता किताबों के पढ़ने से, वो प्रैक्टिकल एनाटॉमी और ऑपरेशन करके खोल खोल कर जब तक उसको समझाता नहीं असलियत की समझ नहीं जाती। इसी तरह ये आत्म बोध जो भी है ये भी एक प्रैक्टिकल मजमून है। आत्मा हम इस जिसम का रूप बने बैठे, कोई चीज अंत समय से निकलती है मौत के वक्त, वो हम है। क्या हम उसको अवलैदा करके देख सकते नहीं। अगर कोई महात्मा जिसने प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है वो आपको बिठा कर पिंड से वो ताकत को तो करो हारे जिसम बेरी से हो जाए, जड़ और जिसम अलहदा हो जाए, अंतर में वो परमात्मा की ज्योति जो है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसकी ज्योति प्रगट हो आए, अंतर वो श्रुति जारी हो जाए, बताओ कि न भारी फर्क है। अपने आप तो ये न हुआ न हो सकता। उस नाम में प्रकाश है, नाम जपत कोट सूर्य ज्यारा करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, अंतर ज्योति का विकास होता। अगर वो विकास नहीं हुआ सारी उम्र चारों बानियों में भी रहे, जब तक जिसको वो बानी है बोध कराने वाली है उसके साथ में लगे शांति करके आए। हमको जब कोई पूछता परमात्मा है तो हम क्या कहते हैं, फलाना ऋषि ये कहता है, फलाना महात्मा ये कहता है, फलाना वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी ये कहती है, ये बात भाई सही है। वो कहते हैं उन्होंने देखा बयान किया, अरे भाई तू बता। तेरा तजुर्बा क्या है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद योर सेल्फ एंड गॉड, क्या तुमने कभी उस परमात्मा की ज्योति को देखा। सवाल तो नहीं देखा तो हजारों ग्रंथ वो थे तो जो कुछ नहीं कर सकते, ग्रंथ वो थे तो शौक पैदा होता, जिसका वो बयान कर रही है उसको पाना है। आग आग कहने से गर्मी नहीं आएगी, बर्फ बर्फ कहने से ठंडक नहीं आएगी, बर्फ और आग कह के उनके साथ बैठने से ठंडक और गर्मी आएगी। तो ये एक हकीकत है, सॉलिड फैक्ट है कहो, एक प्रैक्टिकल चीज अनुभव करने वाली है, जो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने की और हम कर सकते हैं। कब? जब किसी आमिल पुरुष के चरणों में बैठकर वो हमको थोड़ी मदद करके उसकी समझाए, पहले थ्योरी समझाए फिर थोड़ा प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस करा के उसका कुछ तजुर्बा कराए। ऐसे महात्मा का नाम आप जो चाहे रख लो। आज लफ्ज गुरु इतना बदनाम हो चुका है कि नाम लेते ही भी लोग कहते नहीं महाराज मेहरबानी। उसका कारण क्या? जो खुद समृद्ध पुरुष नहीं है, समझे, ना खुद कांटेक्ट हुआ है, ना खुद फर्स्ट है, देख रहा है दूसरों को कैसे दिखाएगा। मुक्त से विश्व मुक्त हो, आत्म तत्व दर्शी आपको आत्म तत्व के बोध के कराने में मददगार होगा, दूसरे तो नहीं। इसलिए हमारे को उस नाम को कांटेक्ट कैसे मिले कहते गुरु से। फिर ये कहा बिन सदगुरु के नहीं न पाऊंगे, जाति तजुर्बे पर बयान कर रहे हैं। 70 साल तक इसी तलाश में रहे ऋषियों मुनियों महात्माओं के, जितने भी उस जमाने में उनको मिल सके, हरिद्वार पर जाते रहे। मर हकीकत का कॉन्टेक्ट कब हुआ? जब गुरु से भी। गुरु रविदास साहब ने तो यहां तक निर्णय कर दिया है, फरमाया तोर खसमे का हुक्म पिया बिन सतगुर चेतिया न जा। ये फंडामेंटल असूल है, जब तक तो सत्य स्वरूप अस्थि नहीं मिलेगी, आत्म तत्व का जिसको बोध है तब तक तो आत्म तत्व को नहीं पा सकते। बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म को होवे, बगैर पूरे गुरु के करोड़ों कर्म कर लो उसको नहीं पा सकते, क्योंकि कर्मों का सिलसिला इंद्रों के घाट है। आपने अदृश्य होना, अगोचर होना, इंद्रों के घाट से ऊपर जाना। जब तक तो ऊपर गया हुआ महात्मा ना मिले, पराविद्या का महात्मा कह दो आप, तब तक काम नहीं बनेगा। तो फरमा रहे हैं बिन गुरु पूरे कोई नहीं मिलता, बिन सदगुरु कोई न पावन। क्या था सद, अगर कोई कर सकता तो करके देख ले, लेकिन नहीं स्वार्थ ये। तो गुरुदासी साहब को ये तजुर्बा और कॉमन सेंस पर भी आमिल के पास बैठे एक चीज की जल्दी समझ आ जाती, पहलवानी की किताबें पढ़ने से पहलवान नहीं बन के दौड़े खाकर तभी काम बन सके। कहते ऐसे गुरु पर मैं कुर्बान हूं, मेरी जान तक भी कुर्बान है, जिसने मेरे चित्त को प्रभु के साथ जोड़ दिया। अब कीमत का मोल है ना, जिसने राग सीखना हो वो तो तानसेन की जूती झाड़ता फिरेगा, जिसने राग ना सीखना हो बेशक तानसेन उसकी जूती झाड़ता फिरे। ऐसे हम बड़ी दुनिया में आते रहे लोग, गुरु नानक और ऋषि मुनि महात्मा दुनिया में आते रहे, लोगों ने उनका क्या स्वागत किया, गालियों के साथ, बुरे बर्ताव के साथ, यहां तक कि गांव में दाखिल नहीं होने दिया गुरु नानक साहब को कसूर शहर में, कि लोगों की अकलें बिगाड़ता। तो ये सवाल किन लोगों के लिए, जिनको आत्म अनुभव का ख्याल आ चुका, संस्कार उभर चुके हैं, उन लोगों की। कहते हम तो भाई कुर्बान 70 साल की तलाश के बाद एक चीज मिली, शुक्रिया अदा करना। गुरु रामदास जी साहब ने आपको बताया 70 साल के बाद मिले, फिर 12 वर्ष फिर सेवा की है, अनबड़ी खुश गुरु साहब की। और इस मिसाल से किया जिसकी नमूना इतिहास में कम मिलता। हमारी नंदनिया हो सकता हो, वो क्या था, मामूली सा बात, मामूली सी बात है कि पांच कोस गुरुंग साहब जहां रहते थे वहां से ब्यासा नदी थी, वहां से पानी लाकर उनको स्नान कराते थे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, मगर किस भाव से किस तरीके से जाते वो सवाल है। उल्टे पांव जाना कि कमर गुरु की तरफ ना हो जाए, पांच कोस तो भाव का सवाल है। बारह वर्ष पानी ढोया, फिर इस हकीकत को पाकर खोल खोल कर समझाया है। दुनिया कहां लग रही है, सब पवन की बारी में उलझ रहे हैं, माफ करना, पवन की बारी, पशु पोषाद हर जो बानी है उस तक किसी किसी कोई अनुभवी पुरुष की कृपा से अनुभव हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बाहरी सिरसे में सब फंस गए।
हर सच्चा गुर भक्ति पाये, सहज मन वसावण्या।
अब आखिर कहते हैं तो वो हरि सच्चा कैसे मिल सकता है, कि तो गुर भक्ति से मिलता है भाई। गुरु भक्ति किसको कहते हैं, गुरु कहते हैं अनुभवी पुरुष आत्म तत्वदर्शी को, उसके उसके लिए दिल में भक्ति भाव, भक्ति भाव से दिल दिल को राह बनता, रिसेप्टिव बनता। जब रिसेप्टिव बन गया दूसरी की ताकत उसमें एट होम होने लगती, बसने लग जाती। देखिए तार का सिलसिला रेडियो ले लो या जाने लो, जो वायरलेस है वहां टिकटिक होती है, यहां उसी तारे वैसी उसी लेवल पर रखकर वाइब्रेशन को वहां टिकटिक यहां भी टिकटिक होते, एक ही जैसी अगर उसकी हो वाइब्रेशन, हजारों मिलों से वो वाइब्रेशन को रिसीव करता। दिल दिल को राह बने, गुरु कहां हो शिष्य कहां हो कोई फिक्र नहीं, दूरी और नजदीकी का सवाल नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सात समुद्रों के पार रहता हो और शिष्य इस तरफ रहता हो, दीदी सोत पटाए कॉन्टेक्ट करो। रेडियो हजारों मीलों से आवाज को कैच करता है कि नहीं, सिर्फ राइट चीज के कॉन्टेक्ट वेव के मुताबिक कर दो वो चीजें मिलेंगी। ऐसे गुरु भी, गुरु जिस्म नहीं है, याद रखो जिस्म रखता है वो पावर जो जिस्म के पोल पर काम करती है वो गुरु है। समझे, अब ब्रह्म बोले काय के बोले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले, एक पोल है ना, पोल से इजहार हो रहा है, उसका इजहार करने वाली पावर है, पोल तो पोल ही है, मगर वो पोल भी मुबारक है जिसमें उसका इजहार हो रहा है। सवाल नहीं है, हर जाके जलवा है जाना ना आज बेहतर, जहां उस जलवा का इजहार हुआ वही बेहतर। देखिए संत महात्मा थे, उन्होंने प्रभु को पाया, ऋषि मुनि, उनके नाम आज तक हम बड़े इज्जत से ले रहे हैं। जिस नीच को कौ में जाना है, नाम जपत चौकुंती माना, जिस नीच को कोई भी नहीं जनता, कहते नाम जपने से चौकुंती में उसका नाम रोशन है। महात्मा बुद्ध कब मरे थे, माफ करना, उस जिस्म में रह को उन्होंने किसी हकीकत को पाया, उसके जिस्म के फूल निकले बर्मा में, उनके लिए खास मंदिर बन रहा इगतपुरी, बड़ी सी बड़ी हस्ती इंडिया की उसको रिसीव करने के लिए जाती है। क्यों, उसकी हड्डियां भी काबिल इज्जत है, जिस जिस्म के पिंजर में बैठकर हकीकत का इजहार हुआ, ये कह रहे हो ना, तिनके जीन खुरगीन सब पवित्र है, जो नाम है जो नाम में रत गए उनकी जीने भी खुरगीने भी उनका जिस्म भी हर एक चीज मुबारक। سو مگر اس کی مبارک ہونا کس بات پر منحصر ہے؟ وہ اس ہائر کوانٹیٹ کے سبب سے ہے. اب ایسا انبھی پوش جو دوسروں کا اس کا انبھو دے سکتا ہے, انتر میں جیوتی پرگٹ کر سکتا ہے, وہ شوتی کے سنا سکتا ہے, ایسے انبھوی پوش کی قدر اس سے جا کر پوچھے جس کو اس کی تلاش ہے. ساری عمر گرنتھ پوتھی پڑھتے رہو, اسے شوق تو پیدا ہوگا مگر اس چیز کی جب تک پراپتی نہیں ہوگی شانتی نہیں ہوگی. بات اتنی تھوڑے لفظوں میں میں عرض کر رہا ہوں. تو فرما کسی اور مہاتما کے سبب سے ہے, اسے کوئی ایک ایم اے پاس چل کر کے چلا, ایک یہاں میں بن گیا, اس میں کیا رسائی میں کیا فرق رہ گیا بھائی؟ یہ تو ایک تمیزی بیان ہے. آپ یہاں سے ایم اے بن گئے ہیں, ایک پیچھے ایم اے آ گیا آپ کے کالج میں پروفیسر لگ گیا, ایک وہاں سے ایم اے پاس کر پروفیسر لگ گیا, کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں, کامن سینس کی بات. ایسے یہاں کا ہی پوش کا ہونا لازمی ہے. جو نہیں آپ کو انبھو نہیں دے سکتا, عالم آپ کو صرف علم دے سکتا, گرنتھوں پوتھیوں کا گیان دے سکتا, انبھو نہیں دے سکے. انبھو کیول کسی انبھوی پوش سے ہی ملے گا اور کسی سے نہیں. سوال تو یہ, جس دا صاحب پکا ننگا ہوئے, اس کپڑے کو اتار دو بھائی, لوگوں کو پسینہ آ رہا ہے, وہی صاحب اٹھ کر اتار دو. جس دا صاحب بھوکھا ننگا ہو تس دا نقل کتوں رج کھائے. ہم نے کسی کی نوکری اختیار کر لی, اس کے پاس خود کھانے اور پہننے کو نہیں, تم کو کہاں سے دے گا؟ سوال تو یہ سمرت پرش کا کام, پھر اس کے دل کے ساتھ دل کو راہ بنانے کا سوال, اس کا نام گربکتی ہے. گربکتی کے سر سینگ نہیں لگی ہوتی ہے, یہی جو گرو حکم دے اس کو سولہ نے پھول دیا. سوامی مہارشی سوامی دیانند جی مہاراج کے جیون کے ایک بڑی بیوٹی خوبصورتی کس بات میں, جب سوامی برجانند جی کے پاس گئے, ان کی بغل میں کچھ کتابیں تھیں, کتاب میں ایسے ہی ذکر آیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, جو پڑھی ہے میں نے. انہوں نے کہا بھی دیکھ دیانند جی کتابیں جمنا میں پھینک. کیا کہا؟ کوئی چونچرا کی چپ چاپ جا کر, بڑے بھاری بدھی کے پہلوان تھے, سب باتیں کہہ سکتے تھے مگر کوئی نہیں, سر تسلیم خم تھا جو سوامی برجانند جی نے کہا. پھر یہاں تک لکھا ہے کہ کئی بار سوامی برجانند جی ان کو پڑھاتے تھے, چھوٹیوں سے بھی تھوڑا کام لیتے, یہ ان کو دبایا کرتے تھے کہ آپ کو کشٹ ہوا ہوگا. ارے بھائی اسی کا نام گرو بنتی, جو گرو حکم دے بیس بیسویں گر کا من مانے تو پرمیشور کی گت جانے. اور سوامی وجانند جی نے کیا کہا ان کو؟ دیکھ دیانند, جو میں نے تم کو سمجھانا تھا ان کتابوں سے نہیں ملا. یہ تو ایک باہری مثال میں آپ کو پہ, اسی ہر ایک مہاتما جو انبھو کی چیز ہے وہ تو بھائی انبھوی ہے, فرسٹ اینڈ ایکسپیرئنس ہے, جس کو ہے وہ آپ کو دے سکتا, آپ کو ریسپٹیو ہونا پڑے گا, جو وہ کہے اس پر پھول چڑھاؤ, پھر تم اسی درجے کو پا سکتے جس کو وہ پا سکتے. اس کا نام گربکتی ہے. اور گربکتی میں کیا ہوتا ہے؟ دل دل کو راہ بنتا ہے. اور اس میں ایک خاص راز کی بات ہے, وہ کیا کہ ہمارا دل کئی جگہ دنیا میں لمپٹ ہو رہا, کہیں بچوں میں, کہیں روپئے میں, کہیں جائیدادوں میں. گربکتی کا مطلب کیا ہے؟ ایک نالی ہو, ہمارے حضور ایک مثال دیا کرتے تھے, ایک نالی ہو اس میں نو سوراخ ہو, پانی بہ رہا ہو اس نالی سے, وہ سوراخوں سے سمتا رہتا ہے ایک ایک قطرہ. اگر سارے سوراخ بند کر ایک سوراخ کھولا چھوڑ دیا جائے کھلا, اس سے پانی دھار مار کر اوپر نکلے گا. تو مطلب صرف یہ ہے کہ انبھوی پوش کے ساتھ دل دل کو راہ بننا جو ہے نا, جب وہ سب سے پیارا لگنے لگ جائے, سمجھو سب طرف سے اس کا خیال رہتا, اور وہ کیا کہتا, ارے بھائی میں بھی جسم نہیں, تو بھی چھوڑ پنڈو چلو, پر انترہارا کنٹیکٹ دے دیتا, और गुरुभक्ति का कुछ मतलब। जिन्होंने इस राज को समझा, सेंट पॉल हुए, वो क्या कहते हैं, इट इज आई नॉट नाउ आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, कहते ये मैं हूं, कहते नहीं ये क्राइस्ट, इतनी मैं निकल गई, तू तू गुरु का स्वरूप बन गए, अब अपने में उसमें तमीज कोई नहीं रही। ये याफी साहब कहते हैं, चुना कुछ फजाए सीना दोस्त, इतनी मेरे सीने की फजा उस प्रीतम से भर गई है कि ख्याल खेश गुम शुद्ध आज जमीरम, मेरे जमीर से मेरे सीने की फजा इतनी उस प्रीतम से भर गई कि अब मेरा अपने आप का ख्याल मुझ में नहीं रहा कि मैं हूं या वो है। इसका नाम गुरु भक्ति का ये फीट है, प्यार का ये खासा, प्रेम का दो से एक रूप बना देता, प्रेम गली एक सांकड़ी ता मैं दो न समा, गुरु और शिष्य भी एक होकर रहना पड़ता। इतनी ये भीली गली है, इससे दो होकर नहीं एक होकर ही निकलना पड़ता। एक अब जब मैवीत में जा, उसका रंग लेगा ना, जिसमें एक होगा उसका रंग लेगा बेख्तियार, अगर वो आत्मानुभव को पाचोगे बेख्तियार आत्मानुभव की खमीर वेव्स चलेंगी, इसके अंतर भी झलके आएंगे, कायदे की बात। तो इसका नाम है गुरु भक्ति। क्या फरमाते हैं गुरु अमरदास जी साहब, मैं गुरु भक्ति सबसे आसान रास्ता है जिससे प्रभु पाया जाता है, उसके मिलने से, साधु के मिलने से साध आवे याद। अगर वकील को याद करो तो मुकदमे और कचहरी आती है ना, डॉक्टर को याद करो बीमार और मरीज और दवाइयां आती हैं, भाई साधु को याद करो प्रभु का ख्याल आता है। पहली बात, उसके मंडल में बैठने से उसका असर मिलता, वो क्या कर पिंड छोड़ो चलो पर रास्ता मिलता, पांडे का काम करता, फिर अंतर में मद देकर अनुभव फर्स्ट एंड कॉन्टेक्ट देता, ये काम गुरु का है। जब आप पिंड में है तो पिंड में हदायत करता है, जब आप पिंड से ऊपर आ जाओ मरकर या जीते जी आगे खड़े होकर साथ हदायत करता, ऐसी हस्ती का नाम है गुरु। सहजे मन में सामने सहजी में प्रभु तुम्हारे अंतर प्रगट हुआएगा जब दिल दिल को रा पाए। इसके मुताबिक ये उसी साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दिया, कहने जैसे अंगूर का पेड़ हो, शाखें जब तक उसमें लगी हैं जुड़ी हैं तब तक वो फल देती हैं, अगर शाखों को पेड़ से काट दिया जाए तो वो फल नहीं ला सकती। ऐसे कहते आई एम दी वाइन्स, मैं अंगूर का पेड़ हूं, तुम मेरी शाखें हो, जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे तब तक फल दोगे, नहीं तो नहीं दे सकते। बड़ी साफ बात है, सुगुण भक्ति से सहज ही में एक चीज की प्राप्ति है, जो फर्स्ट नॉलेज मिलता है, बाहरी हदायत मिलती है, पिंड को छोड़ो आगे चलो सामने आ खड़ा होता है, कितनी भारी बरकत। भाई इस क्वालिफिकेशन के महात्मा दुनिया में हमेशा ही कमयाब रहे, कमयाब हैं और कमयाब रहेंगे। लालों की बोरियां नहीं होती, जंगलों में शेर जंगलों की तरह 30-40 करके नहीं चलते, संत न चले जमाते। ऐसे ही संत भी कहीं कहीं कोई अल वही पुष्ट दुनिया में आता है, सारी दुनिया को रोशनी दे जाता, वो पोल है जिस पर मालिक का इजहार हो रहा, वो पोल नहीं, वो पोल है जिस पर इजहार हो रहा। अरे भाई जो उस कॉन्टेक्ट में आते हो उस इजहार से हिस्सा ले जाते हो, क्या इसका नाम है गुरु भक्ति। गुरु रामदास जी साहब ने गुरु भक्ति कमाल की, सब महात्मा को करनी पड़े, दिन दिन को राह बनाना पड़ता है, ये चीज ही ऐसी है। आगे क्या फरमाते हैं, एक राह ये मुसलमान फंडामेंटल असूल है, जिसको मिला ऐसे ही मिला, जिसको मिल रहा है ऐसे ही मिला।
सतगुर से ता सब किछ पाए, जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए।
कहते ऐसे सत्स्वरूप हस्ती को जो सेवने वाला है उसको हर एक चीज की प्राप्ति हो सकती है। चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे, धर्म काम अर्थ और मोक्ष चारों चीजों का वो दाता, जैसी भावनी करती कोई सेव को वैसी फल ले जाए। यीशु मसीह के पास जब कोई बीमार आते थे तो राजी होकर चले जा, कहते दाई फेथ है उसकी ओर दी, तेरे जो भरोसा है उसे तेरे फायदा दे दिया। असल बात क्या कि उस पोल पर जो अनबड़ी पुरुष है वो मालिक काम कर रहा है, वो पूर्ण ख्याल से आता है, माफ करना उसको नहीं पता लगेगा, पर वो जो अंदर बैठा दूसरे को फैल दे जाता। अंधे आए आंखें मिल गए, बीमारी है बीमारी की शफा होगी। कई जिस भाव से कोई आता है ना वैसे उस पोल पर जहां इजहार है वहां से फैल ले जाता। बात ये कानूनी कुदरत असूना, जैसी से जिस भावना से सेवा करो वैसा फल मिले। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन, भरोसा सिद्ध को विश्वास सारी परमार्थ की बुनियाद। महात्मा भी पूर्ण मिले पहली बात, जो अनुभवी हो, फिर शिष्य का विश्वास भी हो उस पर। अगर वो उसको चोर समझता है माफ करना तो उसको क्या मिलेगा। मन इसका ये नहीं मतलब कि अंधाधुंध विश्वास कर लो, सुनो उसको वो क्या कहता, वो राज की बात साफ कहेगा, हकीकत को जतलाएगा, उसके पास बैठने से खुद को दिल अपील करेगा ये बात कुछ ठीक साथ के संग मुझे प्रभु देना। वो क्लियर कट चीज देखिए, क्लियर कट जो देखकर बयान कर उसके दूसरे को यकीन आने लग, दिल दिल पर असर करता। जिन्हें देखा नहीं ऐसे ही जमीन आसमान के कुलाबे में लाता दूसरे पर असर किया है। माफ करना आजकल प्रचार के लिहाज से कोई कमी नहीं, बड़ा भारी प्रचार हर एक समाज में, हमारे कितने महात्मा बन रहे हैं। तो अनबड़ी पुष्ट की सोपत का फैल का फल है। सोबते साले तुरे साले कुरम, सोबते ताले तुरे ताले कुरम, नेकों की सोबत तुमको नेक बना देगी, बुरों की सोबत बुरी बुरा बना देगी। महापित्र साध का संग जिस पेटत लागा हरी, साधु की सोबत महापित्रता के देने वाली है, जिसके साथ भेटने से, मिलने से नहीं भेटने से, दिल दिल को राह बनने से प्रभु का नशा।
सतगुर दाता सब नवथु का पूरे भाग मिलावणिया।
तो कहते हैं आत्म तत्वदर्शी हर एक चीज का संपूर्ण समर्थ पुरुष है, हर एक चीज उससे तुमको मिल सकती अगर दिल दिल को राम मन। बात वो इजहार है जिसमें मालिकुल काम कर रहा। बात इतनी जी आगे।
ए मन मैला एक ना ध्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे भाए।
कहते वो हकीकत तो हम में है, मगर हमें उसका एहसास नहीं। उसका कारण क्या कि ये मन जो है ना ये एक के साथ जुड़ते ही नहीं लगता, एक ख्याल पर नहीं टिकता। एक ना तिहाय वो मालिक एक जो है उसको ध्यातंतर आत्मे उसकी तरफ मुंह नहीं करता। इसके अंदर द्वैत का आलम है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है कभी उधर भागता है। अरे भाई एक पास ये टिकट ये खड़ा भी हो जाए तृप्त भी हो जाए, आपके पास बैठ जाए गर्मी आएगी कि नहीं। अगर कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए इसको अंतर में कांटेक्ट मिल जाए और मन उस तरफ लगे, अगर बैठे ही नहीं तो उसका इलाज किया। एक आदमी को दवा मिल गई, हमारे हजूर फरमाया करते थे डॉक्टर से दवा ले आए जाले में रख दी खाई नहीं बीमारी कैसे जाएगी। उन्हें कॉन्टेक्ट दे दिया, समझे कॉन्टेक्ट दे दिया। आप उसके तरफ मुंह करने का सवाल है, अगर उस तरफ रुख करेगा बेख्तियार को रात मिले। मगर मुश्किल यह है कि ये भागा भागा फिरता, ये बैठने ही नहीं चाहता। इस मन को माफ करना तोपों के मुंह के सामने ले जाओ ये जाने को तैयार है, मगर अंतर्मुख इंद्रियों के घाट से हटकर तो उस ध्वनि या ज्योति के साथ लगने को तैयार नहीं। बात जवान वही पुष्प मिल जाए जो वो कान टिक दे उस तरफ मन माने ना माने उस तरफ मुंह करो जब थोड़ी देर खड़ा होगा वो खींच देगी पाओ। मन को तो लज्जत ही चाहिए ना, बाहर क्यों भागा भागा फिरता। इसको बाहर दुनिया में लज्जत आ रही है, अच्छा रूप, अच्छे नजारे, अच्छी सुरली धुने इसको खींच रही है। नाम में दोनों चीजें, ज्योति का विकास भी है, बड़े बड़े अंतर नजारे भी हैं और श्रुति भी हो रही है, उद्गीत भी हो रहा है। वो ऐसी राग है, अंतरी राग कहो। मौलाना रूम जिसके मुतल्लिक कहते हैं कि अगर उन नगमों का मैं तुमको जिक्र करूं तो कब्रों से मुर्दे जाग उठे। ये कब्र है ना लंबी, अगर उस दुनिया को सुनने लग जाए ये जाग उठे, पिंड से ऊपर आ जाए, नई दुनिया में पैदा हो जाए। सब महात्माओं ने निधन किया। चमत तबरेज़ साहब एक जगह कहते हैं कि लोगों के गवैये तो किसी किसी वो तो बुलाकर राग सुनाते हैं, हमारा गवैया जब जब भी जाओ जब बैठो वो राग सुनाने के लिए आ जाता। अपने आप अब भी हो रही है वो दुनी, मगर हमारी सुर्तियों के फैल रही है उसको सुन नहीं रही बात। महात्मा आपको अंतर्मुख होना सिखाता, अंतर्मुख हो जाओ, उसके साथ कांटेक्ट देते, एक कांटेक्ट मिल जाए उसको दिनों दिन बढ़ाओ, फिर 24 घंटे पूरे रही दिवस और रात अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कौन ना ने जान के सदगुर पूरा। वो अखंड कीर्तन हो रहा है 24 घंटे का, क्या किसको मिलता है, जिसको पूरा गुरु मिल गया सदगुर बड़ी खुश। बाकियों की अब भी है मगर सुन नहीं रहे, वो बाहर मुखी फैल रहे। तो मन चूंकि एक को नहीं दिहाता, बहुत द्वैत के आलम में फंस रहा है, इसलिए मैल से भरा पड़ा और अलाइशी है, उससे पैर नहीं उठा। मन ही जब खड़ा हो तभी काम बने, जब ये बाहर से असरार लेने बंद करे इंद्रों के घाट से तभी हकीकत को पाए ना। वो हकीकत तो अब भी हम में जिचरे मन लहरी भी चाहे हो मैं बहुत हूंकार, तिचर शब्द साथ ना आयो नाम न लगू प्यार। जब तक किसी चीज का मन में लहरें उठ रही हैं, इसके अंदर वो चीज तो है मगर उसके जब लगे नहीं, उसका रस ना ही, उसका प्यार कैसे पैदा होगा, सवाल तो ये।
तट तीरथ दृशंतर भव अहंकारी, और वधेरे हो मैं मल लावण।
अब अपनी जिंदगी का थोड़ा तजुर्बा बयान करते हैं कि तटों पर तीर्थों पर लोग घर बार छोड़कर जंगलों में जा विराजमान हो गए। कहते हैं कि उतना क्या हुआ, होम की मल और बढ़ गई। मैं तीर्थवासी हूँ, मैं तटों पर निवास करने वाला हूँ, मैंने इतने तीर्थ किए हैं। मुझे कानपुर में गया था मैं, तो वहां एक साहब मिले जो गंगोत्री से जल लेकर उसने राजकुमारी जो मंदिर है वहां पहुंचाया पैदल चलकर 4 बार, और वहां का जल लेकर वहां पहुंचाया। मैंने पूछा साहब मन की हालत क्या, कहने कुछ भी नहीं। ये इंदू के घाट बाहर भाग दौड़ है ना, इसका ये मतलब ना समझो कि तीर्थों की किसी तरह से निंदा है। तीर्थ है वो मुकाम जहां पर कोई ऋषि मुनि महात्मा रहा, अनुभव को पाया प्रभु की, उसका फर्स्ट एनकाउंटिंग हुआ, जहां बैठकर उन्होंने इस दर्जे को हासिल किया, इस हकीकत को पाया, वो जगह भी पवित्र स्थान, वो तीर्थ स्थान। जहां महात्मा जा बैठा वही तीर्थ स्थान बन गया कि नहीं, जिन्हें तीर्थ स्थान कैसे बने। जहां जहां किसी समाज का कोई महात्मा रहा वो तीर्थ स्थान है उनका, डिटेल में दिखलाने की जरूरत नहीं। हजरत मोहम्मद साहब मक्के मदीने वो तीर्थ है, गुरु नानक साहब ननकाने साहब हुए तलवंडी वो ननकाना साहब है, जहां जहां उन्होंने पांव रखे वो तीर्थ स्थान। बात कहते खाली तीर्थों पर बास करने का सवाल नहीं, जब तक मन बाहरी आलाशों से हटता नहीं, कोई अनुभवी पुरुष होकर उसको नाम की ताकत के साथ पौन बानी से पड़े कांटेक्ट देता नहीं, तब तक शांति नहीं, हकीकत को नहीं पाए, दूर रहे। किसी का लिहाज नहीं किया। गुरु साहबों की बानी या किसी अनुभवी पुरुष की बानी, उसमें यही कहा हकीकत को पेश किया, वो किसी को काटते मारते नहीं, उल्टा कहा मैं तीर्थवासी हूं, मैंने इतने तीर्थ। भाई ठीक, शाबाश, क्या तो कुछ शांति मिली है कि तीर्थों का क्या कसूर है? तीर्थ तो तीर्थ ही है, मगर हम लोगों ने माफ करना उनको करप्ट करना, ये हमारे लोगों की मेहरबानी है। कहो मेहरबानी कहो या जुल्म कहो, वो इसलिए बने थे कि एकांत स्थानों घर बार के जमीनों से अलहदा होकर थोड़ी देर महापुरुषों की सोबत में बैठकर प्रभु की याद करें। वो आज हमारी सैर और तफरी की जगह बनी बैठी है, बताओ क्या होगा?
सतगुर से वे तामल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए।
आप फरमाते हैं कि सतगुर को अगर कोई सेवने वाला को उसी को सतरूप हस्ती मिल जाए, ये उसके सेवने वाला बने, क्या उसके हुक्म की बजावरी करे दिली भाव के साथ, दिल दिल को राह बनाए, तो मन की मैल सब जाती रहेगी। वो क्या कहते हैं तो भाई इंद्रों का हाथ छोड़ो, नेक पाक रहो पहली बात, और इंद्रों का घाट छोड़ के तन्मुख इसको ट्रांसेंड करो, अंतर नाम पावर का कॉन्टेक्ट दे इसके साथ जुड़ो। जो अंतर का रस लेने लग जाएगा, इंद्रों के घाट के जो रस फीके पड़ जाएंगे, पहली बात मन को अलैसे कहा से इंद्रों के घाट से आती है, जब बाहरी इंद्रों का घाट छोड़कर अंतर के इंद्र खुल जाए, नाम का रस मिल जाए, उसकी ज्योति नजर आने लग जाए, तो बाहर के रस फीके पड़ जाएंगे नहीं। बाहर की मले कहां से आती है? इंद्रों के घाट से। इंद्री जीत पांच दोगते रह, काम करो लोग अहंकार की जद से बच जाता है अगर इंद्रियों को दमन कर ले। इसीलिए कहा इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। फिर ये कहा दस इंद्रिय जो राखे बास, ताके आत्मा होए प्रगाश। जो दस इंद्रियों पंच कर्म इंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रियों को जो बस में कर ले, कंट्रोल में कर ले, इसके अंतर उस मालिक की ज्योति प्रकट हो आएगी। बाहर सोचना बाहर से आलाशे मन को इंद्रियों के जरिए आती है, इंद्रियों रूपी घोड़े इसको भोग रूपी खेतों में फेंक ले जाते हैं, तो कहते हैं उसको दमन करो। वो महात्मा ये कहते हैं इंद्रियों से हटो, अंतर्मुख हो, बाहर से हटो, अंतर की इंद्रियों खोलो। अंतर जब खेलने को सामान मिलेगा, मन बाहर नहीं जाएगा। एक बच्चे को अंधेरी कोठरी बंद कर दो, वो चीखेगा, पुकारेगा, रोएगा, दरवाजे तोड़ेगा। जब उसको अंतर खेलने को सामान मिल जाएगा, चुपचाप हो जाएगा। ऐसे अंतर में जब परमात्मा की ज्योति शुद्धि जारी हो जाएगी, ज्योति प्रकट होगी, उस रस को पाकर बाहर से हट जाएगा। इसके अंतर जो आलाशे बाहर इंद्रियों के घाट से आ रही है, वो खत्म हो जाएगा। कब होगा? कहते सदगुरु के सेवने से। एक तो उसके मंडल का असर है, जिस तिथिया मन रहती है मंडल का असर, नफ्स हरगिज ना कुछ है जो जिले पे ही, जब इस पर किसी मुर्शिद का साया नहीं पड़ता, मन खड़ा नहीं होता, और फिर वो अंतर्मुख होने का साधन देता, नाम का रस देता, तो सदगुरु के सेवने वाले ही मन की आलाशों से पाक हो सकता। और फिर क्या कहते हैं, जीवत मरे हर से चित लाए, जीते जी मरने का राज आ जाता है। सोच को समेट कर आंखों के पीछे आए, जड़ो चेतन अलहदा हो गई, मरते समय क्या होता, सोच पिंड को छोड़ती है, आंखें उलट जाती हैं और ड्राप सीट हो जाती, नीचे चक्कर टूट जाते हैं, आंखें अभी खड़ी, आंखें फिर जाती हैं, अभी वो जिंदा नीचे ऐसा मर गया। जीते जी मरने का यही राज है, कहते तुमको जीते जी मरने का राज दे देते। हमको मौत से क्यों खौफ होता है? इसीलिए कि मौत मरना नहीं आता, गिड़कता मर जाता है, हाय पता नहीं इसके परे क्या होना। जी जीते जी मरना, पिंड से ऊपर आना सीख जाए, अगले मंडल का तजुर्बा इसी में होने लग जाए, तो मौत का खौफ कहा है? वो कबीर साहब की तरह से कह सकता है कि क्या, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा जग डर रहा है, कहते मेरे जब मरने का नाम आता है तो मेरे अंदर खुशी की लहर जागती, क्योंकि मरने से हमेशा के लिए सुख हासिल हो जाता। सारा जहां उसे डर रहा, वह जिसको अनुभवी पुष्प मिल जाए, अंतर्मुख होने का राज मिल जाए, जीवित मरे सदगुरु मिले उल्टी बेई भाई, जीवित मरे ता बूझ पाए, जीत जी मरने का राज को पा जाता। यही सब महात्माओं ने कहा। मौतु केवल अंत मातु मरो पेश दर इसकी कि तुम मर स्वाभिक मौत आए। कहते हैं कि तुम इस मनुष्य जीवन से फायदा उठाना चाहते हो, जाओ किसी अनुभवी पुरुष के पास, ताकि वो जीते जीते तुमको मरने का तजुर्बा करा रहे, बाहर से हटने का राज, एक नई दुनिया में पैदा होना सिखा दे। एक्सेप्ट यू बी बॉर्न एन यू, यू कैन नॉट सी दी किंग ऑफ गॉड। जब तक तुम नए सिरे से नई दुनिया में पैदा नहीं होते, तब तक तुम हकीकत उस आने की बादशाह में नहीं जा सकते। ये सब महात्मा एक ही कहते हैं। कहते ये कब मिलता है कि सदगुरु के सेवने से।
हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावनिया।
कहते वो हरि अति निर्मल और पवित्र है, पावन है, जब उसके साथ लगोगे तुम भी पवित्र हो जाओगे। कितना भी मैले से मैला मन भी हो, फैलाव में जा रहा हो, उसके साथ मालिक अंतर परिपूर्ण घटघट वासी है, उसके साथ लगने तुम्हारी सब आलाशी दूर हो जाएंगे। लाखों मन लकड़ हो, अंबारों के अंबार लगे पड़े, एक थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी उसमें लगा दो, सब फना हो जा, फूक कर थोड़ी सी स्वाग का ढेर रह जाता। ऐसी करोड़ों उग्र पाप हो इंसान के, मिल साधु लुकी दीजिए, किसी अनुभवी पुरुष के पास बैठो, वो आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने के नाम की थोड़ी चिंगारी देगा, कांटेक्ट देगा, उसके साथ लगने से सब पापों का नाश हो जाएगा। वाल्मीकि डाकू महर्षि वाल्मीकि, और हम भी बन सकते, जिसको ये चीज मिलेगी बनेगा, बात तो इतनी। जब तक हम अक्षी नामों में हैं, पहला कदम ले रहे हैं, इसके आगे कदम नहीं उठाते, जिसको ये अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं, तब तक न शांति है, न संतुष्टि है, न हकीकत का राज खुलता। सारी दुनिया इन अक्षरी नामों में फंसते हैं। इसका ये मतलब ना समझो कि इनकी जरूरत नहीं, जरूरत है, ये पहला कदम है, हमने आगे चलना, जिसको ये अक्षर बोध करा रहे हैं, तब तो काम। बिन नामे सब फर्म पुला, जब तक नाम को कांटेक्ट नहीं मिलेगा, जीव भूल रखे में रहता, आना जाना बना रहता, जन्म मन खत्म नहीं। आगे
पाच गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा।
कहते हैं जब तक कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलता, अंधवार रहता है, हकीकत नहीं खुलती है, अज्ञानी अंधा बेचारा, जिसके अंतर की आंख नहीं खुली वो अंधा। आप अंधा किसको कहते हैं? हम तो कहते हैं जिसके चेहरे पर आंख नहीं ना। संत महात्मा ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं अंधा से ना अखियन जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नानका जे खसम उठे। जिनके अंतर की आंख नहीं खुली, प्रभु को नहीं देख रहे, वो सब बंदे हैं, खाए आंख वाले खाए पे आंख है। तो वो अज्ञानता में है, फैलाव में है, जब तक वो अनुभवी पुरुष उसकी आंख ना खोले तो क्या बने। यही गुरु नानक साहब ने कहा, जे साओ चंदा हो गो है सूर्य चढ़े हजार, एते चानण हो मिया गुरु बिन खोर अंधार। साओ चांद चढ़ जाए, समझे, हजारों सूर्य चढ़ जाए, अंतर के आंख में देखने वाली कुछ बीनाई ना हो, फिर سمجھ گوار ہے کٹ میں سوجت نہیں لانت ایسی جن تلسی یا سنسار کو بیا موتیا بن موتیا بن پانی کا پردہ بھیڑ کے آگے آ جاتا آنکھوں کی نظر نہیں آتا وہ اگر وہ پانی کا پردہ بڑی صفائی سے کوئی لائق ڈاکٹر ہٹا دے پھر وہی روشنی تو انتر میں وہ چیز ہے انتر کی آنکھ کفت بینائی نہیں ہے گرو اس انتر کی آنکھ کے کھولنے والا شمس تبریز صاحب کہتے ہیں میں نے ہزاروں مادر دادوں کو آنکھیں بخش دی وہ کون سی آنکھ ہے یہ شیو نیتر کا کھلنا ہے تھرڈ آئی کا کھلنا ہے If thy eye be single, thy whole body shall be full of light. اگر تمہاری انتری آنکھ کھل جائے تمہارے انتر نور بھر جائے گا بھائی اب ہے سوال تو یہ سب کچھ کرتے کراتے اگر یہ چیز نہیں ملی تو ابھی سمجھے ہنوز دلی دورست ابھی ہم بھرم میں جا رہے ہیں پھیلاؤ میں جا رہے ہیں دے.
विष्टा के कीड़े विष्टा कमावे फिर विष्टा मारे जावणिया
कहते जैसे गंदगी के कीड़ा होता है ना ऊपर से सिर किसी ऊपर निकलता देखते हैं रोशनी या फिर उसी में सिर दबा देता کبھی کبھی ان بھائی کچھ ملیا ہوش آئی پھر جب باہر نکلے پھر وہی یہ حالت ہے ہماری آمرندوں کے گھاٹ کی کیڑے غلادت کے بدلے مہاتما کھولتا بھی ہے تھوڑی دیر پر ادھر ہم اس کے ساتھ منہ نہیں کرتے نا کرے تو اور زیادہ کھل جائے گور بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوا گر بن سوت نہ سد گرو بن مکت نہ کس گرو کی سو کال گرو کی نہیں معاف کرنا ان ہستیوں کی جن کی انتر کی آنکھ آتم تتو درشی ہیں جن کی تعریف میں بے شاست گرنتھ پوتھی ہیں تعریف کر رہے ہیں وہ پرا ودیا کے مہاتما کو آتم تتو درشی ان کی مہما ہے گر بن سوت نہ سد ہوش نہیں آتی سدھی نہیں ہوتی حقیقت کا راز نہیں کھلتا حقیقت کی سمجھ ہی نہیں آتی پہلے تھیوری بھی سمجھ نہیں آتی ماؤ کا وہ بیان کرتا بڑا کھول کھول کر سمجھاتا چلا جاتا کوئی شک کی گنجائش نہیں کیونکہ اسے دیکھا ہے کر کے سوال تو ایک عامل کی زبان سے بچن کا نکلنا ایک خالی کتابوں کی کیڑے کے زبان سے نکلنا کتنا بھاری فرق ہے جس کے اپنے من کا کفر نہیں ٹوٹا دوسرے کے کفر کیسے توڑے گا مقدمے ہزار لوگوں کے ہزاروں کر دیے فیصل نہ چھیڑا مثل اپنی کو عجائب یہ وکالت ہے ارے بھائی پہلے اپنے آپ کو بناؤ پھر دوسروں کو بناؤ اپنے آپ کی تو آنکھ کھلی نہیں مننے کے بس میں دنیا میں لمپٹ ہو رہے ہیں زبان سے گیتا اچارن کر رہے ہیں یا گرنتھ گرو گرنتھ صاحب کی بانی یا اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے کیا بنے گی اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نہ پڑھو پہلا قدم ہے پڑھو بچارو اس میں کیا دیا ہے جو دیا اس کو حاصل کرو یہ ہمارے باپ دادا کے بیش قیمت خزانے ہیں ان کو کھول کر دیکھو کیا دیا جیسے انہوں نے اس حقیقت کو پایا ویسے تم بھی پاؤ پیو دادے کا کھول لٹھا خزانہ تو میرے من بہا نہ
مکتے سے مکتا ہوئے ہوں میں ممتا شب دیکھو
کہتے مکت پش کے سیونے سے تم بھی مکت ہو جاؤ یہ خود مکت نہیں تمہوں کو کیا دے گا اور اس کے سیونے سے کیا ملے گا ہم اور ممتا نام اور شبد کے ساتھ لگنے سے اپنے آپ جاتی رہی جب پنڈ سے اوپر ہے جسم کی ہو میں گئی پنڈ کی ستھول کی جب سوکشم دیہ سے اوپر ہے سوکشم ہو میں گئی جب کارن دیہ سے اوپر آ گئے شبد کے آدھار پر چلی روح ترقی کرتے کرتے کارن ہمیں نہ رہی جب حقیقت میں جاگ اٹھے मैं हूं और ममता कहां रह गई। जी आगे
अन दिन हर जीव सच्चा फेरी पूरे भाग गुर पावनिया।
फरमाते हैं कि अन दिन हर जीव सच्चा सेवी पूरे भाग गुरु भाग मना ले, किसी पूरे गुरु का बड़े भागों से मेल हो ऐसे अनुभवी पुरुष का, तो ये 24 घंटे उस हकीकत में जाग उठता हर वक्त। कबीर साहब ने कहा बैठे खड़े उतारने कह कबीर हम वही ठिकाना। वो बैठा है तो भी उस हकीकत से इजहार है, उसका कॉन्टेक्ट है, सो रहा है जिसम उसका सो रहा है, रू जाग कर आम लोगों के सोने में और अनुभवी पुरुष के सोने में बड़ा भारी फर्क है। जब रू सिमटती है जिसम सो जाता, वो अंतर में जाग उठता है, अगले मंजिलों की सफर करता है, और आम दुनिया के रू सिमटती